भव्य मार्गणा प्रारंभ की थी। पेज नंबर हम 646 पर आए हैं। उसमें से हमने भव्य अभव्य आदि जीवों की और जो भव्य अभव्य पार उससे पार ऐसे जो सिद्ध भगवान उनकी चर्चा की थी। अब जीवों की संख्या उसमें कितनी है और इसी प्रकरण में जीव ने अनादि से कहां कहां काल गमाया है उसकी बात की थी। कल हमने देखा था कि पांच प्रकार का संसार यहाँ लिखा था, इसी में आया था ना। हाँ, पांच प्रकार का संसार सागर, पेज नंबर 643 पर, 643 पर ये शब्द आया था। देखो, स्थित पंच प्रकार संसार समुद्र तय निकसी, सबसे अंतिम लाइन 643, यानी पांच प्रकार के संसार समुद्र से निकलकर पार भये हैं, ऐसे जो लेखा रहित जीवों की वहां चर्चा की थी। अब ये पांच प्रकार के संसार किसको कहा है, तो जो पांच प्रकार के परिवर्तन कहो या परावर्तन है, जो नाम तो हमें मालूम है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और बाद में भाव परावर्तन, इसी क्रम से लेना है। क्योंकि चला चश्मा दे, क्रम से क्यों लेना है, क्योंकि उसमें अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा, द्रव्य परावर्तन से आगे वाला जो परावर्तन है उसमें अनंत काल लगता है। तो अभी पढ़ेंगे 646 पेज पर आए हैं हम। यहाँ जीवनी की संख्या कहे है 560 नंबर की जो गाथा है उसकी टीका पढ़ेंगे। जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य राशि का प्रमाण है। जघन्य युक्ता संख्यात वाला हमने क्या देखा था, ये यहाँ युक्तानंत की बात है। जघन्य युक्ता संख्यात वाली आवली, एक आवली में जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। अब यहाँ बात अनंत की चल रही है, तो जघन्य युक्तानंत नाम का जो अनंत है, सबसे छोटा अनंत है वो जघन्य परितानंत जघन्य परितानंत नाम की जो संख्या है उसको जघन्य परितानंत बार लिखो, आपस में गुना करो, तब जाके जघन्य परितानंत संख्या आती है। तो ये जघन्य, ये सॉरी जघन्य युक्तानंत संख्या आती है। तो जघन्य युक्तानंत इतने अभव्य जीव इस संसार में है। बहुरी संसारी जीवनी के परिणाम में, परिमाण में अभव्य राशि का परिमाण घटाए, अवशेष रहे कितना भव्य राशि का प्रमाण है। इसमें से सिद्धों को पहले से ही लिया नहीं था, क्योंकि सिद्ध भगवान है, उनकी भव्यत्व गुण की वहाँ यानि वो अभिव्यक्ति हो गई, यानी वो हो चुके, इसलिए उनको भव्य यानी होने योग्य नहीं कहते। तो वे भव्यत्व और अभव्यत्व से पार है। तो यहाँ अकेले संसारी राशि में से भव्य और अभव्य ऐसे जीवों के भेद होते हैं। संख्या निकालनी है तो हम यहाँ संदृष्टि में क्या दिखाते हैं कि पूरी जो जीव राशि है अनंत, उसके लिए हम 16 लिखते हैं। ये उसकी संदृष्टि चिन्ह है। संसारी राशि के लिए 13 लिखते हैं और जो सिद्ध राशि है उसके लिए 3 लिखते हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं, फिर भी वो 3 की संदृष्टि 3 ही रहेगी और संसारी राशि 13 की 13 ही रहेगी। तो यहाँ उस 13 में से अभव्य राशि को हम बाद करेंगे तो जो बचेंगे वो भव्य जीवों की संख्या होगी। यहाँ संसारी जीवनी के परिवर्तन कहिए है। अब जो संसारी जीव है वे जो परिवर्तन कहो या परावर्तन, परिवर्तन या परावर्तन यानी वो कितने दफे वो गोल गोल घूमते ना, हम किसी राउंड में अगर कोई ऐसे राउंड हम स्कूल में खेलते थे तो उसकी बाउंड्री राउंड ऐसे दिखाएंगे, कोई भी ग्राउंड की राउंड बाउंड्री होगी तो हम कितने बार घूमेंगे तो उसमें से निकल सकेंगे। हाँ, जो परी के ऊपर दौड़ता है घूमता है वो तो हमेशा घूमता ही रहेगा। वैसे ये संसार जो परिवर्तन है, परिवर्तन कहा ही उसको, तो गोल 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 घूमना, जैसे रहट होता है ना, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वैसे संसारी जीव जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, कभी शुभ भाव किए तो उससे शुभ भाव करके नवे ग्रह तक जाए और फिर कैसे परिणाम पलट जाएंगे कुछ उसका भरोसा नहीं है। मनुष्य की एजेंसिया कोई अन्य एक इंडिया में भी जाएगा, नरक में भी जाएगा, निगोद में भी जाएगा कितनी बार, तो ऐसा ये उसका घूमना चल रहा है अनादि। हम अभी मनुष्य पर्याय में है तो हम पूर्व में भी थे, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनादि से है, हम जीव द्रव्य है, तो अभी हम मुक्त तो है नहीं है, तो मुक्त है नहीं है और इस पंचम काल में जन्म है तो जन्म से तो सम्यक दृष्टि है नहीं हम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अनादि से कहीं ना कहीं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते आए हैं। वो खाली हम अनादि से इतना कहते हैं तो उस टाइम का कुछ सेंस अपने ख्याल में नहीं आता। तो ये अनादि का काल हमने कैसे कैसे बिताया है या उसकी काल का थोड़ा एहसास हो जाए, इसलिए ये परिवर्तन या परावर्तन के माध्यम से हम उनको ये काल कितना बिताया उसकी बात कहते हैं। तो ये जो संसारी जीव है वो परिवर्तन क्या क्या करके आया है उसकी बात चल रही है। परिवर्तन और परिभ्रमण, संसार, ये एक अर्थ है, यानी संसार कहो परिवर्तन कहो या परिभ्रमण करो एक ही बात। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव भेद तई यानी इन भेदों से परिवर्तन पंच प्रकार है। अभी हमने देखा ना, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और बाद में भाव परिवर्तन। कहां द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार है, एक कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, इसी को पुद्गल परिवर्तन कहते हैं। शास्त्र में बात आती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद कभी ऐसा हो जाता है कोई जीव मिथ्यात्व में फिर से चला जाता है, भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में चला जाता है, परंतु ऐसा नियम है कि कितना भी वो घूमे संसार में जन्म मरण करे तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में या परिवर्तन में वो नियम से मुक्त चला जाता है। यानी दोबारा समय को प्राप्त करेगा, मुनि अवस्था धारण करेगा और फिर श्रेणी करके मोक्ष चला जाएगा। ये नियम है, हर एक सम्यक दृष्टि को इतना काल गवाना नहीं पड़ता। कोई अनादि का मिथ्या दृष्टि हो, एक ही भवन में उसने समय दर्शन भी प्राप्त किया, मुनि अवस्था भी धारण की और मोक्ष भी चला, ऐसी कथा आती है ना, आपने सुनी होगी। भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र, हाँ, निगोद में से निकले, एक दो इंद्रिय का उनको पर्याय थी इंद्रगुप्त कीड़े के बीच में, और ऐसे 900 और कितने वो 900 था, इतने पुत्र जन्म से गूंगे कुछ बोले नहीं, तो उनको प्रश्न आया है क्यों मैं नहीं बोलते तमोचरण में, तो यहाँ उन्होंने बोलना बोले, क्या बोले, हे भगवान हमें दिनेश्वरी दीक्षा दीजिए, इतने ही शब्द बोले, और मुनि दीक्षा लेके उसी भाव में मोक्ष चले गए। अलग अलग जीवों के अलग अलग ऐसे परिणाम हो सकते हैं, तो ऐसा ये जो पुद्गल परिवर्तन ऐसा शब्द जो आता है, अर्ध पुद्गल यानी पुद्गल परावर्तन का आधा का। अब यहाँ पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं, हम परावर्तन या परिवर्तन जो भी कोई शब्द आएगा, क्योंकि हमें परावर्तन परावर्तन कहने की आदत है ना, तो यहाँ तो परिवर्तन लिखा है, मीनिंग एक ही है दोनों का। तो ये पुद्गल परावर्तन या परिवर्तन दो प्रकार से उसका वर्णन आता है, एक तो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहो या दूसरे तरह से, टाइम उतना ही है, वो है नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। कहा नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहिए है, अभी इसका वर्णन ये किसको कहना, द्रव्य परिवर्तन होता है ने नक्की क्या होता है, उसकी बात अभी शास्त्र के माध्यम से हम देखें। किसी जीव ने औदारिकाधिक तीन शरीर नी विषय किसी ही शरीर संबंधी छह पर्याप्ति रूप परिणमने को योग्य उद्गल नो कर्म सा है ना, तो नो कर्म शरीर में कौन कौन से शरीर आते हैं, नो कर्म द्रव्य है ना, एक तो जो जीव जो जो पुद्गल द्रव्य ग्रहण करता है वो पांच प्रकार की वर्गना से ही उनका संबंध आता है। पुद्गल की वर्गनाएं तो 23 है, परंतु उसमें से जीव के साथ संबंध रखने वाली या हम जिसको कहते कि जीव जिसे ग्रहण करता है, ऐसे जो पुद्गल है वो पांच ही प्रकार, कौन कौन से, आहार वर्गना, हाँ नहीं वर्गना में बोलो, आहार वर्गना, आहार वर्गना कहेंगे तो आहार वर्गना में से औदारिक शरीर यानी मनुष्य तीरियंतों का शरीर, वैक्रेय शरीर और आहारक शरीर, ये तीन शरीर बनते हैं। तो औदारिक यानी वो आहार वर्गना हुई, फिर भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना, हाँ तो क्रम से अगर कहना हो तो आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और कारमान वर्गना, सूक्ष्म की ओर जाना है, हम दूर से सूक्ष्म को हम बता रहे, ये पांच प्रकार की वर्गनाएं हैं। उसमें कर्म को छोड़कर अन्य चार वर्गनाओं से जो बना है उसको नो कर्म कहते हैं, कर्म और नो कर्म। कर्म में कारमान वर्गना से बना हुआ कर्म आता है, और नो कर्म ये जो बाकी जो है उसको नो कर्म वर्गना भी कहते हैं, अन्य चार वर्गनाओं, और उससे जो बना है उसको नो कर्म शरीर भी कहते हैं, यानी तेजस शरीर, औदारिकादि शरीर, हाँ, और इनको नौ कर्म शरीर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, औदारिकादिक तीन शरीर नी विषय किसी ही शरीर संबंधी छह पर्याप्ति रूप। अब ये तीन शरीर यानी कौन से लेने हैं, आहारक लेना के, देखो ये द्रव्य परावर्तन कौन करता है, मिथ्या दृष्टि करता है, तो आहार शरीर की बात करेंगे तो वो तो समय दृष्टि भावलिंगी मुनि के सिवा होते नहीं है, है ना, हाँ ये तीन शरीर की शरीर है,
ये तीन शरीर है, कार्मण शरीर को भी नहीं लेने का, औदारिक आदि तीन शरीर कहने से औदारिक शरीर, तेजस शरीर और
ऐसे तीन है। हाँ मुझे भी प्रश्न आया था कि आहार क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो तो मुनि को होता है, और यहाँ तो हम द्रव्य परिवर्तन देख रहे हैं। मूल में मूल ये ध्यान में रखना कि ये जो द्रव्य परिवर्तन बताया जाता है वो तो मिथ्या दृष्टि को ही होता है। आहार शरीर वाला तो परमाणु ग्रहण करेगा परंतु फिर वैसा दोबारा वो उसका परिवर्तन नहीं होगा, ख्याल में है ना। तो किसी भी शरीर संबंधी छह पर्याप्त रूप परिणमने को योग्य पुद्गल किसी एक समय में गहे। अभी इस वाक्य का अर्थ समझेंगे पहले। पर्याप्ति का हमने प्रकरण यहाँ लिया था, करणानुयोग परिचय के पुस्तक के समय भी हमने चर्चा की थी, पहले भी इसकी चर्चा की थी, अभी शॉर्ट में थोड़ा फिर बता दूं। पर्याप्ति यानी शक्ति की पूर्णता, पर्याप्ति यानी पूर्णता, किसकी पूर्णता की बात हो रही है, शक्ति की पूर्णता। शक्ति यानी गुण, ऐसा यहाँ अर्थ नहीं लेना, कभी कभी गुण को भी शक्ति कहते हैं, जैसे हमारे ज्ञान में ऐसी शक्ति है कही थी दो पर प्रकाशक शक्ति, परंतु वो तो स्वभाव है, स्वभाव रूप शक्ति की यहाँ बात नहीं है। यहाँ जीव में ऐसी शक्ति यानी वो तो ऐसा उसकी योग्यता बन जाती है कि वो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करे। यदि इसी को शक्ति कहेंगे तो वो सिद्ध में भी होनी चाहिए और फिर वो भी शरीर के परमाणु ग्रहण करेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। यानी ये जो शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करने की, यानी पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना और उनको शरीर रूप परिणमाना या अन्य किसी रूप परिणमाना, अभी जो जो बातें आएगी, इसको कहते वो शक्ति। जीव कुछ नहीं करता पुद्गल में, पुद्गल स्वयं अपने कारण से होता है, परंतु करणानुयोग में सारी ही चर्चा निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो जीव ने किया, जीव ने लिया, जीव ने ग्रहण किया, जीव ने उसको परिणमाया, ऐसी बातें कहेंगे तो ऐसा, क्योंकि कथन तो ऐसा ही आएगा, परंतु वहाँ वो निमित्त का कथन है। जीव परद्रव्य में कुछ भी नहीं करता, ऐसे मूल में पकड़ कर फिर ये बातें आगे पढ़नी हमें। तो जो
यहाँ जो शक्ति की बात चल रही है, वहाँ यहाँ पर हम ये बात बिल्कुल ख्याल में रखें कि गुण की हमेशा पर्याय रहती है, लेकिन शक्ति जो कहा जाएगा केवल शक्ति रूप से जब हम बात करते हैं तो शक्ति को पर्याय नहीं रहती।
तो यहाँ जो अभी शक्ति की पूर्णता, इसी को पर्याप्ति का अर्थ ही होता है पूर्णता, और अपर्याप्त यानी अपूर्ण। अभी ऐसे कौन सी शक्तियां होती है जीव में डेवलप, तो वो डेवलप शक्तियां उत्पन्न होने में कुछ समय लगता है, अंतर्मूल समय लगता है। तो ये कहाँ की बात है, तो जिस जीव कहीं से मरकर आता है, अभी यहाँ कोई मनुष्य मरा, विग्रह गति से जाकर अन्य जहाँ समझो वो किसी चीजें पर्याय में उत्पन्न होने वाला है, तो वहां जाकर वहाँ अभी एक समय में वहां पहुंचे, किसी समय में पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। हमने देखा था ना योग के कारण जैसे कर्म आते हैं, वैसे ही योग के कारण नो कर्म यानी ये पुद्गल परमाणु को भी जीव ग्रहण करता है। उसमें ऐसी मैग्नेटिक जो कुछ पावर, वो जो पावर है, वो जो शक्ति, उसको शक्ति कहा। ये तो विभाव ही है, क्योंकि योग और कषाय ये सारे विभाव है जीव के, तो उन्हीं विभावों के कारण पुद्गल परमाणु भी अपनी योग्यता से वहां आते हैं। तो जब जो आने यानी उनको लेने की योग्यता जीव में उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं शक्ति। अभी उसकी पूर्णता होना, इसको कहते हैं पर्याप्ति। तो ऐसी पर्याप्ति छह है। सबसे पहली है आहार पर्याप्ति, यानी पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके उसको रस रूप और खल रूप परिणमाना, खल यानी सॉलिड रूप और रस यानी लिक्विड रूप परिणमाना, यह है उसकी आहार पर्याप्ति। फिर शरीर पर्याप्ति में ये जो खल रूप जो है उसको हड्डी है, स्नायु है, चमड़ी है, ऐसे जो सॉलिड ऑर्गन्स है उस रूप परिणमाना, उस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता होना। और जो रस रूप है उसमें से ब्लड है, लिम्फ है, ऐसे जो लिक्विड जो कोई ऑर्गन्स है उसको परिणमाने की जो शक्ति की पूर्णता, उसको कहते हैं शरीर पर्याप्ति। पहली हुई आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में रस रूप खल रूप कहाँ हुआ, आहार पर्याप्ति में हुआ कि शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति में रस रूप खल रूप हुआ होगा। एक मिनट, पर्याप्ति का निकालना प्रकरण 256 के आजू बाजू होगा। देखिए छह पर्याप्ति बोले, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आन पान कहो या श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये छह पर्याप्ति है। उसके नीचे का पैराग्राफ देखना, औदारिक वैक्रिय आहार किम विषय, किसी शरीर रूप नाम कर्म की प्रकृति का उदय होने का प्रथम समय सो लगाई। यानी अभी यहाँ शरीर नाम कर्म का उदय बताया, शरीर नाम कर्म के उदय से क्या होता है तो वहाँ योग का कंपन होता है। हमने देखा था योग उत्पन्न होने में क्या कारण है, ऐसा क्यों योग उत्पन्न होता है कि कोई तो विशिष्ट यानी कोई औदारिक शरीर ग्रहण करे और कोई वैक्रिक शरीर ग्रहण करे, तो पहले जो बांधा हुआ कर्म उसमें से औदारिक शरीर नाम के कर्म का उदय होगा तो औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करेगा, जिसके वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा उसके योग ऐसे हो गए कि वो वैसी जाति के परमाणु को ग्रहण करेगा, उसमें भी स्पर्श रस गंध नाम कर्म का उदय होगा तो उसमें विशिष्ट जाति के ही परमाणु ग्रहण करेगा। अब जो गोरा आदमी है वो आयुष्य भर वो गोरे ही परमाणु क्यों ग्रहण करता है, काला आदमी काले ही परमाणु, क्योंकि ये ग्रहण करने का काम पूरे लाइफ टाइम तक चलता है। तो ये विशिष्ट नाम कर्म के उदय में वैसे वैसे योग के कारण जीव वो परमाणु को ग्रहण करता है। इनको खल रस रूप परिणमाने की पर्याप्ति नामा नाम कर्म के उदय थे भाई, ऐसी आत्मा के शक्ति निज उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये आहार पर्याप्ति उसमें लेना, खल रस रूप में परिणमाना, और शरीर पर्याप्ति में उसके जो अलग अलग सॉलिड लिक्विड जो अलग अलग ऑर्गन्स बनना अवयव बनना उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। नीचे देखना तीसरे में मैं बताती हूँ, क्योंकि ये पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि जो जहां जहां द्रवेंद्रिय है वहां वहां आत्मा के प्रदेश है और उनमें जानने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसी पद प्रदेशों से उस विशिष्ट विषय को जानने की शक्ति। जैसे अभी ये नेत्र इंद्रिय है, ये तो द्रवेंद्रिय बाहर जो हमें दिख रहा है, उसके अंदर जहाँ आत्मा के प्रदेश है जो एक्चुअली जानने का काम करते हैं, वो किसको जानेंगे, गंध को जानेंगे कि वर्ण को जानेंगे, देखने का काम करते ना, तो वहां मात्र वर्ण को जानने की शक्ति हुई विशिष्ट आत्म प्रदेशों में, वहां के आत्म प्रदेशों में तैयार होती है, क्योंकि वहां वैसा विशिष्ट कर्म का क्षोक्षम रहता है। वैसे जहाँ घ्राणेन्द्रिय के प्रदेश है वहां से वो शून्य रूप कार्य की शक्ति उत्पन्न होती है, ये जो शक्ति की उत्पत्ति होना या पूर्णता होना उसको कहते हैं पर्याप्ति, उसको कहेंगे इंद्रिय पर्याप्ति। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा है श्वासोश्वास पर्याप्ति, तो जो आहार वगैरह ग्रहण करता है उसको श्वासोश्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति में जो भाषा वर्गना के पुद्गल स्कंधों को भाषा रूप परिणमान, अभी हम बोलते हैं तो क्या होता है, भाषा वर्गना को जीव ग्रहण करता है उसको शब्द रूप परिणमाता है, जीव में ऐसी कोई विशिष्ट योग्यता उत्पन्न होती है ना उसको कहते हैं भाषा पर्याप्ति। और मनोपर्याप्ति, मन पर्याप्ति में भी जो है वो कि द्रव्य मन रूप परिणाम की शक्ति, या वहां से याद करना, गुणदोष का विचार करना वगैरह जो मन का कार्य है वो कार्य करने की शक्ति उपजना, ये सारे है छह पर्याप्त। अब अपना इसे चल रहे हैं ना 643 पेज पर। अब ये वाक्य मैं फिर पढ़ती हूँ, किसी जीव ने औदारिक आदि तीन शरीर निमित्त किसी शरीर संबंधी छह पर्याप्ति रूप परिणमने को योग्य पुद्गल किसी एक समय में ग्रहे, बराबर, यानी ये पर्याप्ति पूरी होने के बाद जीव हर समय उसका वो कार्य चलता है पुद्गलों को लेना और उसको परिणमाना। अब ये जो पुद्गल परमाणु उसने ग्रहण किए वो एक समय में अनंत होते हैं, जैसे कर्म अनंत ग्रहण करता है वैसे जीव ये नौ कर्म भी एक एक समय में अनंत ग्रहण करता है, उसको कहेंगे हम कि औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध, तेजस शरीर का समय प्रबद्ध या कोई वैक्रिक शरीर का समय प्रबद्ध, ऐसे उसको अनंत में ग्रहण करता है। अब ये जो ग्रह ते स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादिक करी तीव्र मंद मध्य भाव लिए यथा संभव गए। अभी जो अनंत परमाणु ग्रहण किए, उस अनंत परमाणुओं में हरेक परमाणु की अपनी अपनी स्पर्श रस गंध वर्ण की विशिष्ट पर्याय थी, अनंत की तो एक सरखी थी नहीं, अलग अलग थी क्योंकि अनंत अनंत ग्रहण किए। तो यथा संभव ग्रहे बहुरी ते द्वितीयादि समय विषय निर्जरा रूप किए, ऐसा ऐसी रचना होती है जैसे हमने कर्म में देखी थी निषेक रचना होती है। नहीं क्या होती है कि जो अनंत कर्म ग्रहण करता है जीव, वो आबाधा काल तक तो जीव के साथ रहता है और आबाधा काल पूर्ण होने के बाद हर समय उसमें से कुछ परमाणु निकलते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं उसकी निर्जरा होना। ये संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं, हर समय वो निकल जाते हैं। एक समय में ग्रहण किए, अब उसमें से जितनी उसने स्थिति बांधी है आबाधा काल के पूरा होने के बाद, समझो किसी ने वो हम कहते हैं 70 कोड़ा कोड़ी साल की मिथ्या तो की स्थिति बांधी, तो क्या होता है 7000 साल तक तो कुछ नहीं किरेंगे कर्म। उसके बाद हर समय में विशिष्ट अमाउंट में विशिष्ट उसकी संख्या में वो परमाणु सतत हर समय हर समय हर समय हर समय फिरते चले जाएंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक। किसी ने समझो 10 साल का कर्म बांधा, तो उसकी आबादा पूरी होने के बाद हर समय, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अन्य कर्म का उदय, इसका चलता रहेगा उदय, फिरना यानी उसका उदय होना, फिरता भी रहता है उसका फल भी मिलता रहता है। तो जैसे ये कर्म में है, परंतु नौ कर्म में कोई आबाधा नहीं है, आबाधा ने उस काल में कुछ नहीं फिरना, इसको कहते आबाधा। नौ कर्म क्या है, ग्रहण किया और फिर उसका छूटना भी प्रारंभ हुआ, पूरा को पूरा एक साथ नहीं, उसमें से कुछ 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 फिरते रहते हर समय में। ये क्या, ये द्वितीयादि समय विषय निर्जरा रूप किए बहुरी अनंत बार अगृहितनी को ग्रही करी छोड़े। अभी ये अगृहित किसको कहना, गृहित किसको कहना, ये सारी बातें अभी आने वाली। क्या कहते हैं, अनंत बार अगृहितनी को ग्रही करी छोड़े, यानी परमाणु को ग्रहण किया उसको छोड़ा, सारे के सारे तो नहीं छोड़ते हैं, क्रम से एक एक समय में उनका छूटना चलता रहता है। समझो आयु के पहले समय में जो अनंत परमाणु ग्रहण किए हैं, उसमें से उसी समय से निर्जरा भी प्रारंभ होती, छोड़ना भी चलता चालू रहता है, कुछ कुछ निकलते रहते कब तक, मरण के समय तक। दूसरे समय में भी ग्रहण किया वो भी चलता रहता है उसका छूटना, तीसरे समय में ग्रहण किया उसमें से भी थोड़ा थोड़ा छूटना चलता है, हर एक का एंड टाइम मरण का समय है। तो ये तो ग्रहणा और छोड़ना चलता है। तो अभी किसी एक समय द्रव्य परावर्तन काउंट करना शुरू किया ना, तो वहां अगृहित यानी पहले नहीं ग्रहण किए थे ऐसे परमाणु वो ग्रहण कर रहे हैं। हमने समझो यहाँ 8 बजे से ये हमने द्रव्य परावर्तन काउंट करना चालू किया, तो भी यहाँ से पहले कभी नहीं ग्रहण किए थे ऐसे परमाणु वो ग्रहण करता है, तो उसको कहते अगृहित परमाणु। ग्रहण करता है छोड़ता है, ग्रहण करता है छोड़ता है, ग्रहण करता है छोड़ता है, तो क्या कहते हैं, अनंत बार अगृहितनी को ग्रही करी छोड़े। ये अगृहित का सारा डिस्क्रिप्शन आगे आने वाला है अगले पैराग्राफ में, ये पढ़ेंगे और फिर इसका पूरा अर्थ लगाएंगे। फिर अनंत बार मिश्रणी को ग्रही करी छोड़े, अगृहित ने अभी पहले कभी नहीं ग्रहण किया था, मिश्र ने उसमें से कुछ ग्रहित है कुछ अग्रहित है, और बीती ग्रहितानी को अनंत बार ग्रही करी छोड़े। ऐसे भय पीछे यानी ऐसा होने पर जे पहले समय पुद्गल ग्रहे तेई पुद्गल, वे ही पुद्गल कहा, और तैसे ही स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि करी किस ही जीव कही नो कर्म भाव को प्राप्त होई, यानी उसका वो नो कर्म रूप परिणमित होकर वो वैसे वे ही पुद्गल आएंगे। कितना समुदाय रूप काल मात्र नो कर्म द्रव्य परिवर्तन है, यानी उतना काल तो गिनना। हमने स्टॉप वॉच चालू किया यहाँ, अब जो जो परमाणु आएंगे वो तो सारे के सारे तो नहीं छोड़ेगा, कुछ तो जीव के साथ रहेंगे, नया नया ग्रहण भी करता रहेगा छोड़ता भी रहेगा, पहले तो अग्रहित को ग्रहता रहेगा, फिर मिश्र को ग्रहता रहेगा, फिर गृहित को, ऐसा उसका सारा टेबल अभी हम देखेंगे बाद में। परंतु ऐसे करते करते वे ही के वही पदभर और उसी स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय से ही ग्रहण है। समझो चार परमाणु उसके अन्य है, बाकी सारे अनंत परमाणु एक जैसे, और चार परमाणु उसके, चार छोड़ो एक परमाणु की भी स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय अलग टाइप की होगी तो वो काउंट नहीं करना। काल तो काउंट करना, एक बार हमने काल काउंट करना शुरू किया तो बीच बीच में कुछ कुछ कहीं कहीं चला गया अन्य अन्य जन्म धारण के लिए, परंतु वो वैसे के वैसे उसने पुद्गल परमाणु नहीं ग्रहण किए, तो वो काल तो बीत जा रहा है, काल तो बीतता है, परंतु वैसे पुद्गल परमाणु फिर से दोबारा ग्रहण करने के लिए अनंत काल चला जाता है। वो कैसा अनंत जाता है वो सारा टेबल आएगा अभी आप। पहले तो उन्होंने उसका शॉर्ट डेफिनेशन बता दी और उसका पूरा वर्णन अभी आगे आएगा। देखो यहाँ लिखा ना कि जे पहले समय पुद्गल ग्रहे ते ही पुद्गल और तैसे ही स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादिक करी और किसी जीव के नो कर्म भाव को प्राप्त होई कितना समुदाय रूप काल, यानी उसने काल को नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं, जीव करी पूर्वे ग्रहे ऐसे परमाणु जिन समय प्रबद्ध रूप संधनी विषय होई ते गृहित करिए। समय प्रबद्ध ने एक समय में ग्रहण किए हुए अनंत परमाणु उसको कहते समय प्रबद्ध, यानी जिस समय प्रबद्ध में जो परमाणु पूर्व ग्रहण किया ऐसे है उसको कहते गृहित। बहुरी जीव करी पूर्वे न ग्रहे ऐसे परमाणु जिनी विषय होई ते अगृहित कहिए। गृहित और अगृहित दो जाति के परमाणु जिनी विषय होई ते मिश्र कहिए। अब इसका सारा खुलासा अभी बताए। यहाँ को कहे अगृहित परमाणु कैसे है, अभी उसका समाधान करते हैं। काका समाधान, सर्व जीव राशि के प्रमाण को समय प्रबद्ध के परमाणु का परिमाण करी गुणी है। जीव राशि कितने हैं? अनंत है। अब ये पूरी जीव राशि जो अनंत है उसको समय प्रबद्ध के परमाणु का परिमाण करी गुणी है, यानी एक समय में जितने परमाणु जीव ग्रहण करता है अनंत में करता है, तो जीव राशि वाला अनंत गुना ये समय प्रबद्ध वाला अनंत, उससे उसको गुना करना। जो प्रमाण आवे ताको अतीत काल के समय निका परिमाण करी गुणी है, जो प्रमाण होई इससे भी पुद्गल द्रव्य का प्रमाण अनंत गुना है। देखो ये पुद्गल है कितना अनंत उसको बताते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक जीव एक समय में कितने पुद्गल ग्रहण करता है? अनंत। उसको हम क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध, है ना। एक समय में एक जीव अनंत ग्रहण करता है, एक जीव एक समय और अनंत ग्रहण करता है, जिसको हम समय प्रबद्ध कहते हैं। एक जीव एक समय में एक समय प्रबद्ध इतने परमाणु ग्रहण करता है, तो ऐसे जीव कितने हैं? अनंत है, जिसको पूरे यानी जीवों को हम ये जो अनंत बात करेंगे तो अनंत पुद्गल अनंत जीव एक समय में कितने करेंगे, तो जीव की संख्या गुना समय प्रबद्ध, बराबर। अभी तो एक समय वाली बात थी, अभी ऐसे कितने समय बीते हैं अभी आगे की बात नहीं करेंगे, जो बीत चुके हैं तो अतीत काल के समय को लेना। देखो ये यहाँ फिर पढ़ती हूँ। सर्व जीव के प्रमाण को समय प्रबद्ध के परमाणु का परिमाण करी गुणी है। वो क्या आया? जीव के प्रमाण को समय प्रबद्ध से गुणा करेंगे तो अनंत जीवों को एक समय में जितना परमाणु ग्रहण करते उसकी संख्या आएगी। ये तो एक समय की बात हुई। और जो प्रमाण आएगा ताकउ अतीत काल के समय का परिमाण करी गुणी है। जो प्रमाण होई अभी इसको यहाँ एक समय के बदले में अतीत काल के अनंत समय जो बीत चुके हैं उसको लेना। तो आज तक कितने ग्रहण किए जीवों ने, सारे ही जीवों ने आज तक कितने परमाणु ग्रहण किए थे उसकी संख्या है ये। अब यहाँ तो पुद्गल परमाणु लिखा, यानी उसने कर्म नौकर में सारा ही लेना। तो इतने परमाणु ग्रहण किए सभी जीवों ने मिलकर, फिर भी देखो इससे भी पुद्गल द्रव्य का प्रमाण अनंत गुना है। यानी आज तक सभी जीवों ने जो जो पुद्गल कर्म या नौकर्म रूप से ग्रहण किए थे उससे भी अनंत गुना पुद्गल अभी बाकी है, जो अभी किसी जीव ने आज तक ग्रहण नहीं किया। क्यों ऐसा? जाते जीव राशि ते अनंत वर्ग स्थान गए पुद्गल राशि हो है। हमने पहले द्विरूप वर्ग धारा देखी। द्विरूप वर्ग धारा इन्हें दो का वर्ग है चार, वो पहली संख्या, चार का वर्ग 16, ये दूसरी संख्या। जैसे हम दे के बे चार पाड़े लिखते हैं ना, ये पढ़ते हैं, तो वहाँ हमने 2 × 2 = 4, ऐसे यहाँ एक स्क्वायर में हम कहेंगे। पहला स्क्वायर है चार, पहला वर्ग स्थान है चार, दूसरा वर्ग स्थान है 16, तीसरा वर्ग स्थान है 16 का वर्ग 256, चौथा वर्ग स्थान है 256 का वर्ग, जिसको हम पन्नट्टी कहते हैं, 65,536, उसका वर्ग होगा 12, उसका वर्ग होगा 31। ऐसे वर्ग 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 हम करते जाते हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे अनंत वर्ग स्थान जाने के बाद जीव की जो राशि है, हमने देखा था जीव कितने हैं, तो अनंत है। अब इन जीवों से भी अनंत गुणा पुद्गल, अकेले अनंत से गुणा नहीं करना। हम शुरू में सिद्धांत रेशिका में ऐसे कहेंगे कि जीव अनंत है और पुद्गल उससे अनंत गुणा है। तो खाली जीव को अनंत करे तो पुद्गल नहीं आता, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये जो द्विरूप हमने वर्ग धारा दिखाई उसमें जीव की जो संख्या है अनंत, उसको वर्ग करो। एक बार वर्ग हुआ, फिर वर्ग का वर्ग करो, फिर वर्ग का वर्ग करो, फिर वर्ग का वर्ग करो, ऐसे कितने बार वर्ग करना, अनंत बार वर्ग करना, तब जाके पुद्गल की राशि आती है। तो एक बार खाली हमने कितना, एक जीव को एक समय पर बचा, तो अनंत जीवों को एक बार ही अनंत से गुणा किया हमने, और एक अनंत जीवों के एक समय के इतने, तो अनंत जीवों के तीन का बीते हुए काल के कितने, वो और एक अनंत, यानी दो बार ही तो अनंत किया उसको। और पुद्गल कितना है, अनंत बार वर्ग करो इतना है। तो इसलिए आज तक सभी जीवों ने मिलकर जितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया था उससे अनंतानंत गुना पुद्गल अभी अगृहित रूप से पड़ा हुआ है इस विश्व में। इसे क्या कहते हैं, मैं फिर पढ़ती हूँ, मैं तीन लाइन होगी ना, जाते ही से पढ़ती हूँ चौथी लाइन में। जाते ही जीव राशि तई अनंत वर्ग स्थान गए पुद्गल राशि हो, ये वर्ग स्थान का अर्थ समझ में आया ना। ताते ही अनादिकाल नाना जीवनी की अपेक्षा भी अगृहित परमाणु लोक विषय बहुत पाई है। यानी अनादिकाल से सभी जीवों ने जितने परमाणुओं को ग्रहण किया था आज तक, उससे भी अनंतानंत प्रमाण में गुना पुद्गल ऐसा अगृहित रूप से पड़ा है इस विश्व में। बहुरी एक जीव का परिवर्तन काल की अपेक्षा नवीन परिवर्तन प्रारंभ भया तब सर्व ही अगृहित भय। ये क्या कहना चाहते हैं? अगृहित ये हमने नाना जीवों की अपेक्षा अगृहित बताया कि वे अगृहित है जिसको आज तक किसी भी जीव ने अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं किया, वो अगृहित कहलाता है। अब एक जीव की अपेक्षा अगृहित कब कहेंगे? तो हमने 8 बजे से अभी पुद्गल परिवर्तन मापना चालू किया था, तो इस 8 बजे से पहले अनादिकाल से इस 8 अभी जो हमने गिनना प्रारंभ किया वहां तक के जो सारे पहले ग्रहण किए थे उसको भी हम अगृहित में गिनेंगे। कि हमने विशिष्ट समय में वो चालू किया ना गिनना, द्रव्य परिवर्तन गिनना हमने अभी 8 बजे चालू किया है। तो इस 8 बजे के पहले पहले जो हमने सारे ग्रहण किए थे आज तक अनादि से, वो सारे हम अगृहित में डालेंगे। वो एक जीव की अपेक्षा अगृहित है। नाना जीवों के यानी सभी जीवों की अपेक्षा अगृहित किसको कहेंगे? कि आज तक किसी जीव ने अपने शरीर रूप से या पुद्गल कर्म रूप से उनको ग्रहण ही नहीं किया है उसको अगृहित में डाले। क्या लाया? नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा। हाँ, आवाज देखिए, ये सिर पड़ती है। एक जीव की अपेक्षा, एक जीव का परिवर्तन काल की अपेक्षा नवीन परिवर्तन प्रारंभ भया, यानी अभी उसने समझो 10 परिवर्तन पूरे किए, अभी उसका 11वां परिवर्तन है, तो उस समय पहले 10 परिवर्तनों में उसने जो जो परमाणु ग्रहण किए थे वो सारे हम अगृहित समझेंगे। तब सर्व ही अगृहित भये, पीछे ग्रहे ते ही ग्रहित हो है, यानी उस विशिष्ट पर्टिकुलर परिवर्तन में जो जो उसने ग्रहण किए है शरीर से, उसी को हम गृहित कहेंगे। उसके पहले वाले परिवर्तनों में जो जो ग्रहण किए थे उसको अगृहित कहेंगे उस विशिष्ट जीव के लिए। तो यहाँ जिस अपेक्षा गृहित अगृहित मिश्र कहे है तो यथा संभव जानना, यानी नाना जीवों की अपेक्षा होगी तो नाना जीवों की अपेक्षा से जो बात है वो लेना, और एक जीव की अपेक्षा से कहे कथन चल रहा हो तो एक जीव की अपेक्षा वैसा जानना। अब विशेष दिखाई ये है, अब ये जो हमने पढ़ा था ऊपर कि इतना अनंत बार ये ग्रहण करता है फिर वो ग्रहण करता है फिर वो तो क्या है उसका मीनिंग, उसकी बात अब यहाँ चलेगी। उद्गल परिवर्तन का काल 3 प्रकार है। कहाँ अगृहित के ग्रहण का काल, तो अगृहित ग्रहण काल है, यानी पुद्गल परावर्तन में जो ग्रहण काल कहते ना, उसने अगृहित 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 किया ग्रहण किया तो उसको कहते अगृहित ग्रहण काल। तो जब अगृहित परमाणुओं का ग्रहण करता रहता है तब उसको कहेंगे अगृहित ग्रहण काल। गृहित के ग्रहण का काल तो गृहित ग्रहण काल है। गृहित तो परमाणु का नाम है और वो जब जीव लेता है जितने काल तक निरंतर तो उसको कहेंगे गृहित काल, गृहित ग्रहण काल। और मिश्र के ग्रहण का काल तो मिश्र ग्रहण काल। देखो गृहित अगृहित और मिश्र ये तो परमाणु कौन से टाइप के उसकी बात चली, और उसको लेने का जो निरंतर चलता रहेगा काल उसको कहते हैं काल। देखो गृहित अगृहित और मिश्र इसकी बात हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे नोट है ना, नए नोट हमारे पास आए तो एकदम ब्रांड न्यू नोट आए, बंडल आया हमारे पास 1000 रुपए, एक ही बंडल नहीं लेना, वो समझो एक एक रुपए की ले रहे या 10-10 रुपए की नोट है हमारे पास, तो ये सारे कैसे हैं अगृहित है, नए नए हैं और हमने ग्रहण किए अभी, वे हमने लिख के रखे नंबर से और फिर जाके बैंक में भर दिए और फिर दोबारा हम महीने के बाद हमने लेने के लिए गए वहां, उसमें से कुछ ले या सब लिए तो वही के वही नंबर मिलेंगे। आप हो सकता है 3 पॉसिबिलिटी के, वे ही सारे के सारे मिलेंगे तो हम कहेंगे उसको गृहित, कुछ उसमें से आएंगे कुछ अलग आएंगे तो उसको कहेंगे मिश्र, और टोटली नए आएंगे तो अगृहित। तो वैसे जो हमने लेकर छोड़े हैं और फिर दोबारा ग्रहण करते हैं तो वो हो गए गृहित, परंतु कंडीशन क्या, उस समय प्रबद्ध में से सारे ही सारे गृहित होने चाहिए, ये सारे सारे अगृहित होने चाहिए, ये उसमें से कुछ गृहित हो गए कुछ अगृहित हो गए उसको हम मिश्र करेंगे। तो उसको जो लेने का काल है उसको गृहित ग्रहण काल, अगृहित ग्रहण काल या मिश्र ग्रहण काल कहेंगे। तो इन्हीं का परिवर्तन जो पलटना तो कैसे होता है, इसमें भी उसका यानी टेबल है, जैसे हम लॉक टेबल वगैरह देखते ना ऐसे इसका भी टेबल है, इसके भी विशिष्ट प्रपोर्शन में कौन से लिए जाते हैं कब कितना लिए जाते हैं कितने काल तक, उसका सारा ही अभी वर्णन हम पढ़ेंगे। तो अनुक्रम यंत्र करी दिखाइए है, यानी इनका जो काल का जो पलटना है, पहले गृहित का होगा या मिश्र का होगा या कैसा होगा, वो जो काल का पलटना है वो यंत्र द्वारा यानी उसके टेबल द्वारा उसका सारा कथन करेंगे। इसको कहते हैं द्रव्य परिवर्तन का यंत्र। अब ये यंत्र यानी कोष्टक, जैसे हम लॉक टेबल वगैरह देखते ना वैसे ये अलग अलग यंत्र है, यानी शॉर्ट में वो कैसे डिनोट करना चिन्ह कैसे देना ये सारी यहाँ बातें होगी। तो इस यंत्र में या तो 0 लिखा है या प्लस साइन की है या 1 लिखा है, इसी में सारा टेबल है। तो इसमें से अगृहित के लिए 0 साइन है, इसको कहते कि यंत्र विषय अगृहित की सहना नहीं तो बिंदी जानना, बिंदी यानी 0, तो अग्रहित परमाणु बताने के लिए यंत्र में यानी इस कोष्ठक में जीरो लिख देंगे। और मिश्र की सेनानी हंस पद यानी प्लस साइन, बाजू में तो उड़ी खड़ी लाइन है वो नहीं देना, ये जीरो है वो अग्रहित है, प्लस की साइन है जिसको हम बेरीज या जोड़ देने की साइन कहते हैं, एडिशन की साइन, ये प्लस साइन ये है मिश्र की। और गृहित की सेनानी यानी गृहित बताने के लिए एक संख्या लिखेंगे, और दो बार लिखने से अनंत बार जाने लेना। जैसे पहले हमने ये देखा था, किसने देखा था दो बार लिखने से क्या होता है वो, हाँ वो किसने देखा था, वो उच्चार किसने देखा था, सदगुण अनंत बार जान लेना। वो खाली लिखेंगे दो बार, अभी तीन ही साइन है, एक जीरो की साइन, एक प्लस की साइन और एक एक की साइन। समझो दो बार जीरो लिखा तो उसका क्या अर्थ हुआ, अनंत बार अग्रहित का ग्रहण, इतना जानना। दो बार प्लस लिखेंगे तो अनंत बार मिश्र का ग्रहण, दो बार एक लिखे तो अनंत बार गृहित का ग्रहण। अब ये जो द्रव्य परिवर्तन का यंत्र है उसमें देखो, एक तो यहाँ छह कॉलम्स है, छह उभे कॉलम है ना यहाँ, और पहले कॉलम में क्या है जीरो जीरो प्लस, और दूसरे कॉलम में फिर जीरो जीरो प्लस। तो पहले कॉलम में जीरो जीरो है उसका अर्थ होता है अनंत बार अग्रहित का ग्रहण, उसके बाद प्लस यानी एक बार मिश्र। अभी यही प्रोसेस चालू रहेगा, अनंत बार अग्रहित फिर मिश्र, अनंत बार अग्रहित फिर मिश्र, अनंत बार अग्रहित फिर मिश्र, ऐसे करते करते एक बार मिश्र, दो बार मिश्र, तीन बार मिश्र, चार बार मिश्र। मिश्र भी जब अनंत बार हो जाएगा उसको लिखने के लिए पहला कॉलम सेम दूसरे कॉलम में रिपीट किया फर्स्ट लाइन में, तो ये प्लस प्लस साइन दो बार हुई बराबर ना। तो तीसरे कॉलम में क्या लिखा जीरो जीरो वन, यानी जो पहले दो कॉलम रिपीट हुए दो बार लिखा उसी का अर्थ हुआ अनंत बार। यानी अनंत बार जब मिश्र का होता है तब फिर बीच में अनंत बार अग्रहित का होकर एक बार गृहित का होगा। अब जो पहले तीन कॉलम है वैसे ही तीन कॉलम आगे है, यानी वो एक संख्या कब आती है, अभी ये जो हमने अनंत अनंत बीच में बताया वैसे के वैसे पहले तीन कॉलम वैसे के वैसे दूसरे तीन कॉलम, यानी पहले तीन कॉलम के एंड में एक अंकड़ा है तो दूसरे तीन कॉलम के एंड में फिर दोबारा एक आंकड़ा है, तो एक आंकड़ा दो बार आया उसका अर्थ क्या हुआ अनंत बार हुआ। यानी ऐसा अनंत बार होने के बाद वो फिर अगली लाइन में बाद में समझाऊंगे, अब इसमें से पढ़ेंगे हम। कहा विवक्षित, विवक्षित का अर्थ होता है पर्टिकुलर, विवक्षित नौ कर्म पुद्गल परिवर्तन का पहले समय से लगाई प्रथम बार समय प्रबद्ध विषय अग्रहित का ग्रहण करे। हमने काउंट करना चालू किया कि नौ कर्म पुद्गल परावर्तन हमने किसी एक जीव का हमको बताना है, तो विशिष्ट एक समय में हमने अभी माना था ना 8 बजे चालू किया, तो पहले समय में तो जो ग्रहण करेगा वो सारे अग्रहित ही कहेंगे हम उसको, क्योंकि वहां से हमने नौ कर्म पुद्गल परिवर्तन काउंट करना चालू किया है। उसके पहले अनंत बार जो कुछ उसने परिवर्तन किए वहां के पुद्गल परमाणु नहीं ग्रहण किया, अभी एक जीव की अपेक्षा चल रही है ना, किसी एक जीव की चल रहा है, तो वहां से अभी पहले समय ने पहले बार जो समय प्रबद्ध लिया उसने वो अग्रहित का ग्रहण किया, दूसरी बार अग्रहित ही का ग्रहण करा की करे, तीसरी बार अग्रहित ही का ग्रहण करे, ऐसे निरंतर निरंतर ने एक समय का भी अंतर छोड़े बिना निरंतर अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो ही निवरे, निवरे ने होकर समाप्त होगा, यानी अनंत बार अग्रहित का ग्रहण, अग्रहित का ग्रहण, अग्रहित का ग्रहण, ऐसा अनंत बार अग्रहित का ग्रहण हो जाएगा, तब एक बार मिश्र का ग्रहण करे। या ही तई यंत्र विषय पहले कोठा विषय दो बार बिंदी और एक बार हंस पद लिखे, हंस पद ने प्लस साइन पहले कॉलम में, पहली लाइन के पहले लेफ्ट से पहले कॉलम में जीरो जीरो प्लस लिखा है, उसका अर्थ होता है अगृहित का ग्रहण अनंत बार होने के बाद एक बार मिश्र का ग्रहण होता है। बहुरी तहां पीछे तैसे ही निरंतर, अभी फिर निरंतर शब्द मुख्य है, निरंतर अनंत बार अगृहित का ग्रहण करी एक बार मिश्र का ग्रहण करे, यानी हर बार वो एक बार मिश्र का ग्रहण करने के पहले पहले अनंत बार अगृहित का ही ग्रहण होता है। ऐसे ही अनुक्रम तई अनंत अनंत बार अगृहित का ग्रहण करी करी एक एक बार मिश्र का ग्रहण करे, यानी हर समय दूसरी बार मिश्र का ग्रहण करने के पहले अनंत बार अगृहित का, फिर तीसरी बार मिश्र का ग्रहण करने के पूर्व भी अनंत बार अगृहित का, यानी निरंतर अनंत बार अगृहित का ग्रहण करने के बाद ही एक बार मिश्र का ग्रहण होता है, अनंत बार अगृहित का करने के बाद ही एक बार मिश्र का होता है। ऐसे ही मिश्र का भी ग्रहण अनंत बार हो है, यानी एक बार मिश्र, दो बार मिश्र, तीन बार मिश्र, और हर एक मिश्र के बीच बीच में अनंत बार अगृहित का ग्रहण, ये समझ में ना, एक बार मिश्र हो और दोबारा मिश्र का ग्रहण करे उसके बीच में अनंत बार अगृहित का ग्रहण होगा, लगातार निरंतर कहा उसको। यही तय अनंत बार की सहनाने के निमित्त, यानी अनंत बार ये बताने के लिए यंत्र विषय जैसा पहला कोटा था तैसा ही दूसरा कोठा लिखा, इसका समझ में आया, दो कोठे सेम है उसका और उसके अंत में मिश्र है, यानी जीरो जीरो प्लस और जीरो जीरो प्लस, तो उसका अर्थ होगा प्लस दो बार आया तो इसका अर्थ होगा इसे मिश्र भी अनंत बार ग्रहण किया, यानी मिश्र लगातार अनंत बार यहाँ नहीं हो रहा है, लगातार होने वाला तो अगृहित है, अनंत बार अगृहित एक मिश्र, अनंत बार अगृहित दूसरा मिश्र, अनंत बार अगृहित तीसरा मिश्र, अनंत बार अगृहित, ऐसा वो चलेगा, ऐसे मिश्र भी अनंत बार हो जाए। बहुरी तहां पीछे तैसे ही निरंतर अनंत बार अगृहित का ग्रहण करी एक बार गृहित का ग्रहण करे, यानी अनंत बार मिश्र का ग्रहण हो जाए, बीच बीच में अनंत बार अगृहित का हो गया, अभी ऐसा होने के बाद क्या होगा, फिर अनंत बार अगृहित होकर एक बार गृहित का होगा, तैसे निरंतर अनंत बार अगृहित का ग्रहण करी एक बार गृहित का ग्रहण करे। यही सही तीसरा कोठा विषय दो बिंदी और एक का अंक लिखा, यानी जीरो जीरो वन लिखा, पहले कोठे में क्या लिखा जीरो जीरो प्लस, दूसरे कोठे में जीरो जीरो प्लस और तीसरे कोठे में जीरो जीरो वन। बहुरी अगृहित ग्रहण आदि अनुक्रम से जैसे यू एक बार गृहित ग्रहण भया तैसे ही अनुक्रम से एक एक बार गृहित ग्रहण करी अनंत बार गृहित ग्रहण हो है, यानी क्या कहते हैं अभी यही प्रोसेस फिर चलूंगा, एक बार गृहित के लिए कितना कितना किया था पहले से, फिर अनंत बार अगृहित एक मिश्र, अनंत बार अगृहित दूसरा मिश्र, अनंत बार अगृहित तीसरा मिश्र, ऐसे मिश्र भी अनंत बार हो जाए फिर अनंत बार अगृहित और एक बार गृहित होगा, अभी दोबारा गृहित करने के लिए पूरा सारा प्रोसेस दोबारा हो जाएगा, तब दो बार गृहित, तीसरी बार गृहित होने के लिए अनंत बार अगृहित एक मिश्र, अनंत बार अगृहित एक मिश्र, अनंत बार ऐसे मिश्र अनंत बार हो गए, तब जाके फिर अगृहित अनंत बार होकर फिर गृहित दूसरी बार होगा, ऐसे गृहित एक बार, गृहित दो बार, गृहित तीन बार, जब हम तीन बार कहते हैं तो बीच में ये पूरा प्रोसेस रिपीट करना, यानी वही सेम सीक्वेंस, अगृहित मिश्र, अगृहित मिश्र और फिर अगृहित गृहित, ऐसा होगा, तो ये पहले तीनों कॉलम फिर रिपीट किए, तो तीन कॉलम दो बार लिखे तो उसका अर्थ हुआ गृहित भी अनंत बार ग्रहण किए। देखो ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ, तहां पीछे तैसे ही निरंतर अनंत बार अगृहित का ग्रहण करी, एक बार गृहित का ग्रहण करे यानी तेईस तीसरा कोठा विषय दो बिंदी और एक का अंक लिखा। बहुरी अगृहित ग्रहण आदि अनुक्रम ते जैसे यू एक बार गृहित ग्रहण भया तैसे ही अनुक्रम ते एक एक बार गृहित ग्रहण करी अनंत बार गृहित ग्रहण हो है, यानी ऐसे गृहित ग्रहण भी अनंत बार हो जाएगा। यही तई जैसे तीन कोठे पहले लिखे थे तैसे ही अनंत की सहनाने के निमित्त यानी अनंत बार ग्रहण किया ऐसा बताने के लिए दूसरा तीन कोठे लिखे, यानी पहले तीन कोठे का ग्रुप फिर दोबारा वैसे वैसे तीन कोठे का ग्रुप, यानी तीन कोठे का ग्रुप दो बार लिखा, उसका अर्थ हुआ गृहित ग्रहण अनंत बार हुआ। तो ऐसे होते प्रथम परिवर्तन भया ताते इतना प्रथम पंक्ति विषय लिखा, यानी ऐसा गृहित का ग्रहण अनंत बार हुआ वो सारा ये पहली पंक्ति पूरी हुई। तो इस तरह अभी दूसरी पंक्ति में अलग सीक्वेंस होगा उसका। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ दिखाइए, दूसरी पंक्ति में भी छह कोठे है ना, तभी तो उसका अर्थ बताते हैं। पूर्वोक्त अनुक्रम भये पीछे यानी ऐसा अगृहित अगृहित हमने जीरो जीरो प्लस तब जाके जीरो जीरो वन होगा, और ऐसा ही वन भी जब अनंत बार हो जाएगा तब अभी उसका सीक्वेंस बदल गया। तो दूसरी पंक्ति से उसका सीक्वेंस अलग है उसको हम बताएंगे। तो पूर्वोक्त अनुक्रम भये पीछे निरंतर अनंत बार मिश्र ग्रहण करे तब एक बार अगृहित ग्रहण करे। अब मिश्र ग्रहण करना लगातार चलता रहेगा, पहले हमेशा क्या करता था जीरो जीरो प्लस या जीरो जीरो वन या जो कुछ है, तो बीच में जीरो जीरो ही अनंत बार करता था, जीरो जीरो का अर्थ अगृहित ही अनंत बार होता था। अब उसका पलट गया परिवर्तन, वो क्या हुआ अब अनंत बार मिश्र ग्रहण करेगा तब जाके एक बार जीरो आया। देखो प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो और प्लस प्लस वन लिखा। तो क्या लिखा था लिखते हैं देखो, पूर्वोक्त अनुक्रम भये पीछे निरंतर अनंत बार मिश्र ग्रहण करे तब एक बार अगृहित ग्रहण करे। देखो ये गृहित भी ग्रहण किए ना तभी भी उसके स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय वैसी नहीं थी, क्योंकि वैसी होती तो पुद्गल परावर्तन वहीं पर पूरा हो जाता, अन्य प्रकार से उसके थे परम
बात जो समझ में नहीं आया आपको। देखो अभी देखिए अपने शरीर को हाथ लगा के देखिए तो उसमें नरमाई आपको लगेगी, जो उसमें नरमाई है यानी स्पर्श गुण है तो इसमें रस गुण भी है, इसमें गंध गुण भी है, प्रत्येक शरीर का गंध भी अलग अलग है। तो अभी इस वक्त जो अभी अपने पास मौजूद है वैसा का वैसा दोबारा हमें प्राप्त होगा जब एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है, तो ये होने के लिए कितना समय लगता है ये टाइम गैप बताना चाहते हैं।
और खाली वैसा का वैसा नहीं, वे ही पुद्गल परमाणु हाँ, ये भी है,
वो तो मूल है परमाणु भी वही चाहिए, तो अभी
परमाणु चाहिए
अभी हमने चालू किया है स्टार्ट करने के लिए। जब जो परमाणु है वही के वही परमाणु वही के वही उनकी डेंसिटी चाहिए, यानी स्पर्श भी वैसा, उसमें स्पर्श में आठ पर्याय होती है तो आठों पर्याय उसी तरफ से, रस की पांच पर्याय है तो वो भी पांच पर्याय में से अभी जो फिलहाल है वैसे की वैसे,
क्योंकि पहले हमने गृहित भी ग्रहण किए परंतु यानी परमाणु तो वही थे परंतु उनकी पर्याय बदल चुकी थी, इसलिए उसको नहीं हमने परावर्तन वहाँ पूरा नहीं हुआ, परिवर्तन चालू ही रहा, मैंने हमारा टाइम ड्यूरेशन चल ही रहा है, टाइम काउंटिंग हमारा चल ही रहा है।
ये क्या बात बताना चाहते है कि ऐसा इस जीव ने कितना काल गवाया है, ये तो अभी तो ये पुद्गल परावर्तन से सबसे छोटा परावर्तन है, इसके आगे का और काल बड़ा बड़ा आएगा तो और स्तर चक्रा में लगेगा, फिर लगेगा नहीं नहीं मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई है और इसी भूमि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है।
हम टाइम कहाँ कहाँ व्यर्थ बर्बाद करते हैं ना, इसकी फिर हमें वो चलता है जो नहीं, यानी कुछ उसमें है ही नहीं है दम या उसमें से अपना कुछ लाभ नहीं है, उतना नुकसान होता है, ऐसी चीजों में हम कहाँ बर्बाद टाइम करते हैं उसका ख्याल आता है, क्योंकि एक समय तो अपना बढ़ने वाला नहीं है, हर एक जीव की अपनी जो आयु बांध कर आया है उसमें एक समय की भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, अभी समझो किसी ने बताया कि अब ये जितना पैसा आपका उतना ही रहेगा, उसमें भी कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करेंगे हम? एक दिन में गांव डालेगी क्या? उसी में अपना अभी गुजरा करना है, तो हम संभाल संभाल को उसको जितना जरूरी है बिल्कुल उतना ही खर्च करेंगे। जब ये टाइम का सेंस आता है तो ऐसा लगता है हम कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं अपना टाइम। तो फिर वो बार बार हमारा अपना ध्यान, चलो अपना कल्याण किसने है उसी में लगेगा, अपना उपयोग अपना कहाँ लगता है उसकी बात। देखो ये नीचे हो गए ना, अभी 649 में जाते है प्रथम कोठा विषय, दो हंस पद और एक बिंदी लिखी यानी प्लस प्लस जीरो लिखा। बहुरी निरंतर अनंत बार मिश्र ग्रहण करी, एक बार अग्रहित ग्रहण करे तो इसी क्रम से अनंत बार अग्रहित ग्रहण करे, यानी प्लस प्लस जीरो और प्लस प्लस जीरो, यानी अभी तो पहले तो हम अग्रहित अनंत बार निरंतर करते थे, अब यहाँ क्या मिश्र अनंत बार ग्रहण करते जाएंगे तब एक बार अग्रहित होगा, दूसरे बार अग्रहित ग्रहण करने के लिए बीच में अनंत बार लगातार यानी निरंतर मिश्र ग्रहण करेगा तब दूसरी बार अग्रहित, फिर अनंत बार मिश्र तीसरी बार अग्रहित, अनंत बार मिश्र चौथी बार अग्रहित, ऐसे अग्रहित भी अनंत बार हो जाएगा, प्रोवाइड उसके बीच बीच में अनंत बार ये सारे मिश्र आएंगे। तो इसी क्रम से अनंत बार अग्रहित ग्रहण करे जाते पहला कोठा सारी खा दूसरा कोठा लिखा, दूसरी लाइन में प्लस प्लस जीरो और प्लस प्लस जीरो, तो जीरो पहले कोठे में भी है दूसरे कोठे में भी है, यानी पहले सर का ही दूसरा कोठा है, तो दो बार लिखा तो उसका अर्थ हुआ अनंत बार होगा। बहुरी तहां पीछे निरंतर अनंत बार मिश्र ग्रहण करी, एक बार गृहित ग्रहण करे यानी भी प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो और फिर प्लस प्लस वन, ये ख्याल में आता है ना, डायरेक्ट जीरो जीरो के बाद वन नहीं लिखा, फिर बीच में अनंत बार मिश्र का भी ग्रहण होगा, तो प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो और प्लस प्लस वन, ये पहले तीन कोठे हुए। अब अगले तीन कोठे ऐसे ही रिपीट किया तो वन दो बार आया तो उसका अर्थ होगा अनंत बार ग्रीक, इसको बताते हैं। देखो ये दूसरा पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ, कहाँ पीछे निरंतर अनंत बार मिश्र ग्रहण करी, एक बार गृहित ग्रहण करे, यहाँ से तीसरा कोठा विषय, दो हंस पद और एक एक का अंक लिखा, तो मिश्र आदि मिश्र ग्रहण आदि पूर्वोक्त सर्व अनुक्रम लिए एक एक बार गृहित ग्रहण होई, तो ऐसे गृहित ग्रहण भी अनंत बार हो है। यानी हमने देखा ना प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस जीरो और प्लस प्लस वन, अभी ये वन निकालने के पूरा प्रोसेस रिपीट करना, तो दोबारा वन आया, तीसरी बार किया पूरा प्रोसेस तो तीन बार वन आया, वन यानी गृहित का ग्रहण, ऐसे गृहित का ग्रहण भी अनंत बार हो जाएगा। यहाँ तक जैसे पहले तीन कोठे लिखे थे तैसे ही दूसरा तीन कोठे लिखे, ऐसे हो तो संत यानी ऐसे होता हुआ दूसरा परिवर्तन भया, अब ये पूरा परिवर्तन यानी पुद्गल परिवर्तन नहीं हुआ है, ये उसमें से जो उसके जो सीक्वेंस था ग्रहण का वो अभी और चेंज हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ दिखाइए, ये कोठे की तीसरी पंक्ति में अभी क्या लिखा है, वहाँ प्लस प्लस वन है, पूर्वोक्त क्रम भय पीछे निरंतर अनंत बार मिश्र का ग्रहण करी, एक बार गृहित का ग्रहण करें, अनंत बार मिश्र के बाद एक बार गृहित को लिया भी। याते प्रथम कोठा विषय दो हंस पद और एक एक का अंक लिखा यानी प्लस प्लस वन, तो अनंत अनंत बार मिश्र ग्रहण करी करी एक एक बार गृहित ग्रहण करी अनंत बार गृहित ग्रहण होने, यानी एवरी टाइम अनंत बार मिश्र का ग्रहण करने के बाद एक बार गृहित, फिर अनंत बार मिश्र के बाद दूसरी बार गृहित, अनंत बार मिश्र के बाद तीसरा बार गृहित, ऐसे गृहित भी अनंत बार हो जाएगा। यहाँ पहला कोठासारी का दूसरा कोठा लिखा यानी प्लस प्लस वन और प्लस प्लस वन यानी वन अनंत बार हुआ। गौरी अनंत बार मिश्र का ग्रहण करी, एक बार अगृहित का ग्रहण करे तो तीसरे कोठे में फिर अनंत बार मिश्र का बाद एक बार अगृहित होता है, इसलिए प्लस प्लस जीरो लिखा। यानी पहले तीन कोठे कैसे हुए, प्लस प्लस वन, प्लस प्लस वन और प्लस प्लस जीरो। याते तीसरा कोठा विषय दो हंस पद और एक बिंदी यानी प्लस प्लस जीरो लिखे। तो जैसे मिश्र ग्रहण आदि अनुक्रम तई एक बार अगृहित का ग्रहण भया, तैसे ही एक एक बार करी अनंत बार अगृहित का ग्रहण हो है। पहले तीन कोठे में लिखे ना, लिखा हमने प्लस प्लस वन, प्लस प्लस वन और प्लस प्लस जीरो, फिर दोबारा प्लस प्लस जीरो होगा, तीन बार चार बार ऐसे अनंत बार हो जाएगा, इसलिए पहले तीन कोठे फिर दोबारा और तीन बार यानी वही तीन कोठे उन्होंने एक बार और लिखा। तो तीसरी लाइन में पहले तीन कोठे और दूसरे तीन कोठे है, तो इसका अर्थ हुआ कि जो अगृहित का ग्रहण भी इसी तरीके से अनंत बार हुआ। ताते पहले तीन कोठे थे तैसे ही दूसरा तीन कोठे लिखे, ऐसे हो तो संते यानी ऐसा होते हुए तीसरा परिवर्तन भया, अभी और एक चेंज हुआ, उसमें पलटना और हुआ यानी उसका सीक्वेंस और पलट गया। थे आगे चौथी पंक्ति का अर्थ दिखाई है, पूर्वोक्त क्रम भये पीछे निरंतर अनंत बार गृहित का ग्रहण करी। अब ये निरंतर हर समय जो समय प्रपद लेगा अनंत परमाणु ग्रहण करेगा वो सारे गृहित ही हो गए, गृहित का ग्रहण, गृहित का ग्रहण, गृहित का ग्रहण, गृहित का ग्रहण, ऐसा अनंत अनंत ऐसा अनंत बार गृहित का ग्रहण हो जाएगा। तब एक बार मिश्र का ग्रहण करे, अब अगृहित का नहीं, अगृहित का तो कभी कभी होगा, अभी क्या हुआ गृहित का अनंत बार फिर एक बार मिश्र का, इसलिए वन वन प्लस। याते प्रथम कोठा विषय दो एक और एक हंस पद लिखा यानी दो बार एक और एक बार हंस पद यानी प्लस की साइन। तो अनंत अनंत बार गृहित का ग्रहण करी करी एक एक बार मिश्र ग्रहण करी अनंत बार मिश्र का ग्रहण हुआ यानी इसी सीक्वेंस से एक बार मिश्र, दो बार मिश्र, तीन बार मिश्र, ऐसे मिश्र भी अनंत बार हो जाएगा। दो मिश्र के बीच में अनंत बार गृहित का ग्रहण होता है क्योंकि वन वन प्लस लिखा है ना, वन का अर्थ होता है गृहित, तो अनंत बार गृहित होने के बाद एक बार मिश्र, फिर अनंत बार गृहित, फिर दो बार मिश्र, फिर अनंत बार गृहित, फिर तीसरी बार मिश्र, ऐसे मिश्र भी अनंत बार हो जाएगा। या तो प्रथम कोठा सारी का दूसरा कोठा किया, बहुरी तहा पीछे अनंत बार गृहित का ग्रहण करी एक बार अगृहित का ग्रहण करे, अभी अगृहित कभी कभी होता है। देखो यहाँ पे तीसरा कोठा विषय दो एक का और एक बिंदी लिखी यानी वन वन जीरो। बहुरी चतुर्थ परिवर्तन की आदि तई जैसा अनुक्रम करी यानी चौथी पंक्ति में जैसे जिस अनुक्रम से ये लिखा है ना, तीन कोठे लिखे है, यहू एक बार अगृहित ग्रहण भया यानी चौथी लाइन में तीसरे के कोठे के अंत में अगृहित का एक बार ग्रहण हुआ। तैसे ही अनुक्रम तय अनंत बार अगृहित ग्रहण हुई, जैसे तीसरे तीसरे कोठे के अंत में अगृहित का ग्रहण एक बार हुआ, वैसे फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करना, कौन सा वन वन प्लस, वन वन प्लस और फिर वन वन जीरो, ये दोबारा हुआ, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार, ऐसे अनंत बार हो जाएगा अगृहित का। ऐसे अनंत बार अगृहित ग्रहण हुई, या तो पहले तीन कोठे किए थे तैसे ही आगे अनंत बार की सहनाने के अर्थी यानी अनंत बार किया ऐसा बताने के लिए दूसरा तीन कोठे किए, चौथी लाइन में जैसे पहले तीन कोठे है वैसे आगे के तीन कोठे है और वो कोठे के अंत में जीरो लिखा है, इसका अर्थ होता है वो अगृहित। ऐसे होते समते चतुर्थ परिवर्तन हुआ यानी वो चौथी जो सीक्वेंस है चौथी टाइप का उसका हुआ। बहुरी की चतुर्थ परिवर्तन का अनंतर समय विषय, अभी ये जो सारा हुआ ना, अभी इसके अगला समय, ये जो जीरो लिखा है ना, अभी वन वन जीरो अंत में आया चौथी लाइन के अंत अंतिम कोठे में अंतिम जो है वो जीरो आया, उसके पश्चात वाला जो समय होगा विवक्षित नौ कर्म द्रव्य वर्तन के पहले समय विषय जे पुद्गल, अभी जे पुद्गल लिखा है, वैसे पुद्गल नहीं लिखा, जे पुद्गल स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि भाव को लिए ग्रहण किए थे ते ही पुद्गल, वो परमाणु भी अन्य नहीं लिए, वे ही पुद्गल किस ही स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि भाव को लिए शुद्ध गृहित रूप ग्रहण किए हैं। शुद्ध गृहित ने सारे के सारे वही गृहित, इसलिए शुद्ध गृहित लिखा हुआ, अकेला गृहित नहीं लिखा, गृहित यानी वो तो लिए वे ही परमाणु, परंतु तभी उनकी पर्याय अलग अलग थी, तो वे ही परमाणु क्या क्या लिखा, ते ही पुद्गल किस ही स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादि भाव को लिए, उनमें जो अविभाग प्रतिच्छेद थे कुछ पर्याय के वो भी सेम होने चाहिए, शुद्ध गृहित रूप ग्रहण कीजिए है तो यहू सब मिला हुआ संपूर्ण नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन जानना। इसमें चार अलग अलग परिवर्तन देखी ना हमने, सीक्वेंसेस बदलते बदलते, तो ये सारा ही एक पूरा द्रव्य परिवर्तन का जब कोष्ठक टेबल पूरा हो जाएगा उसके पश्चात वाले समय में जीव वैसे वे ही पुद्गल, वैसे के वैसे भी नहीं, वे ही पुद्गल परमाणु और उसकी स्निग्ध रुक्ष वगैरह जो कुछ है उसके भाव स्पर्श रस गंध वर्ण की उन्हीं भावों के साथ ग्रहण करेगा तब उसको एक नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। अभी पुद्गल परिवर्तन दूसरे तरीके से भी बताते हैं, यानी वैसे के वो सारे वैसे के वैसे जैसे अभी इस समय में है वैसे उसने सारे ग्रहण करने का, उसी मात्रा में वे ही पुद्गल परमाणु, अभी उसमें दो चार कम हो वो नहीं चलेगा, तो उसके लिए कितना काल लगता है वो सारे इन्होंने ये जो अनंत 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 सारे बताए ना उसी सीक्वेंस से ग्रहण करे, और ये सारा पूरा होने के बाद केवल तब जाके उसी के अनंत समय में शुद्ध गृहित को ग्रहण करेगा। शुद्ध गृहित यानी उसकी वो पर्याय भी वैसी होनी चाहिए सारे, और पुद्गल परमाणु भी वे ही होने चाहिए, अन्य पुद्गल परमाणु नहीं चलेगा।
देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जीव के जितने प्रमाण हैं, वो जीव का प्रमाण तो अनंत बताए, उसके अनंत बार वर्ग होने के बाद जितने परमाणु हैं, उन परमाणु के हिसाब से देखा जाता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 23 प्रकार के वर्गनाएं बताई है, उसमें से यहाँ पे हमें तीन की बात देखनी है, आहार वर्गना, तेजस वर्गना और मनोवर्गना, तो इनमें ही इतने हैं कि वो मिलते मिलते हमें कितने तकलीफ होती है, यानी ये प्राप्त करने के लिए ये जीव का कितना समय जाता है, ये प्राप्त करने के लिए जीव को कोई गड़बड़ नहीं करनी है, लेकिन ये प्रोसेस होते ही रहता है, ये टाइम गैप कैसा निकल जाता है वो समझाने के लिए परावर्तन एक माप बताए, माप यूनिट, यानी किसी जीव को इतना परावर्तन करना ही पड़े ऐसा कुछ नहीं है, ये परावर्तन अगर हमको तोड़ना है उससे बाहर निकलना है तो अपने स्वरूप का अनुभव करे तो ये पांच परावर्तन जो है बंद पड़ जाते हैं, बंद पड़ते हैं, लेकिन वो गिनने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तो वो संसार सागर से तो अभी यानी जहाज में जैसा कोई टुकड़ा भी मिल जाए तो वो लकड़े के टुकड़े के साथ किनारा पकड़ता है, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी टुकड़ा अपने हाथ में आ जाए तो अपन पार निकल जाएंगे, तो लोगों को ऐसा लगता है हमको इतने परावर्तन करने पड़ेंगे ना, कुछ कर रहा है, करने पड़ेगी कि क्या बात है, तो वो कैसा कैसा टाइम जाता है, ये टाइम कितना, मतलब हमें लगता है ना ये परावर्तन एक परावर्तन नहीं, यहाँ तो इस जीव ने तो अनेकों बार अनंत बार ऐसे परावर्तन किए कंप्लीट, अभी तो एक परावर्तन की बात आपको समझाई जा रही है, पुद्गल परावर्तन वो तो सबसे छोटा काल है, पहले समझने में ही पसीना निकल जाता है क्योंकि सारे नए नए बोलो नौ कर्म में कौन कौन आएगा, आहार वर्गना, तेजस वर्गना और मनोवर्गना, भाषा वर्गना भी आप ले सकते, लेकिन हमें तो बात तो यहाँ तीन, शरीर मन वाणी, तो मन में मनोवर्गना आएगी, आहार वर्गना में औदारिक शरीर, वैकृत शरीर आदि आएंगे। नो कर्म वर्गना है तो उसमें भाषा वर्गना भी आएंगे। इसमें सिर्फ कर्म की बात नहीं रही, ये तीन शरीर की बात है। तीन शरीर में जो औदारिक शरीर, या तो मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से बात की, इसलिए औदारिक शरीर को लिया, तेजस शरीर और
वैकृत या तेजस नहीं, आहार औदारिक या वैकृत, तेजस तो होता ही ना।
शरीर कितने प्रकार के हैं? शरीर कितने प्रकार के हैं आंकड़ा बताइए मेरे को। पांच प्रकार के ना, तो इसमें से कौन से लेना है अपने को? आइदर आहार औदारिक और वैकृत। हाँ, तो इन तीन शरीर रूप, लेकिन नौ कर्म जो हम कहते हैं तो नौ कर्म की वर्गना यदि ग्रहण होगी ना, क्योंकि नौ कर्म द्रव्य परावर्तन क्या क्या है वो भी आएगा ना। जब आपका आवाज कैसा है, वैसा ही वैसा आवाज वहां पर भी होना चाहिए। नौ
कर्म पुद्गल का है ना सर, नौ कर्म पुद्गल में सारे ही आएंगे। अब देखिए 650 पेज पर, अब जैसे नौ कर्म में देखा वैसे कर्म में भी है। अभी सेम एप्लीकेशन है, कल हम पढ़ेंगे दोनों का काल एक ही है। जितना नौ कर्म पुद्गल परावर्तन का लगता है उतना ही कर्म पुद्गल परावर्तन को लगता है। ये सेकंड पैराग्राफ है 650 पेज पर। आगे कर्म पुद्गल परिवर्तन कही है, किसी जीव ने एक समय विषय आठ प्रकार कर्म रूप जे पुद्गल ग्रहे आयु सहित आठों कर्म लिए, तो आठ प्रकार के जो पुद्गल परमाणु उसने ग्रहण किए कर्म संबंधी ने, ते एक समय अधिक आवली प्रमाण आबाधा काल को गए पीछे द्वितीय आदि समय ने विषय निर्जरा रूप किए। क्या कहते हैं, जब एक समय प्रबंधक कोई लेता है जी, आठों ही कर्म के परमाणु ग्रहण किए, अभी वो दूसरे समय में निर्जरा नहीं होती उसकी, तो उसका छूटना कब प्रारंभ होता? तो आबाधा काल के बाद। तो कम से कम आबाधा कितनी होती है? तो आवली में एक समय के पश्चात उसका वह फिरना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो पीछे द्वितीय आदि समय ने विषय निर्जरा रूप किए, पीछे जैसा अनुक्रम आदि तय लगाई अंत पर्यंत नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन विषय कहा। अभी जो अनंत लिए और कुछ छोड़े, दूसरे समय में अनंत लिए कुछ छोड़े, तीसरे समय में अनंत लिए कुछ छोड़े, तो वो छोड़े में से ग्रहण करना तो रह जाएगा, पहले जो नहीं लिए है वही ग्रहण करता रहेगा। अधिक बार तो अगृहित, जैसे हमने पहली लाइन में पहले देखा है ना जीरो जीरो और बाद में उसमें प्लस लिखा था, जीरो जीरो प्लस लिखा था, तो वैसे कर्म में भी ऐसे होगा कि आबाधा काल तक तो छोड़ता है नहीं, फिर छोड़े, फिर अनंत ग्रहण किए कुछ छोड़े, फिर अनंत ग्रहण किए कुछ छोड़े, तो ये छोड़ने का भी अनंत में है, मगर अभी ग्रहण तो पहले पहले तो अग्रहित का ग्रहण ज्यादा होगा। सेम जो हमने टेबल नौ कर्म में देखा था वही टेबल कर्म में भी लगा लेना। पीछे जैसा अनुक्रम आदि तय लगाए अंत पर्यंत नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन विषय कहा, तैसा ही अनुक्रम चारों परिवर्तन संबंधी, चार परिवर्तन यानी चार लाइन बताई थी ना उसको कहते चार परिवर्तन, तो चारों परिवर्तन संबंधी इस कर्म द्रव्य परिवर्तन विषय जानना, यानी जैसा द्रव नौ कर्म में लिया वैसे ही कर्म परिवर्तन में भी लेना, उसमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। विशेष इतना है उसमें डिफरेंस क्या है, कर्म के बारे में विशेषता क्या है उसकी चर्चा आप करेंगे। तहा यानी जो हमने अभी देखा था पहले वो तहा नौ कर्म संबंधी पुद्गल थे, यहाँ कर्म संबंधी पुद्गल जानने, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन में नौ कर्म परमाणु थे, अब कर्म द्रव्य परिवर्तन में कर्म के परमाणु जानना। अनुक्रम विषय किछु विशेष नहीं, जो वहाँ जीरो जीरो प्लस लिखा था वहां से शुरू करके और जिस ऑर्डर से बताया था वही ऑर्डर वही सीक्वेंस यहाँ भी होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। पीछे पहले समय जैसे पूर्व ग्रह थे तेई पुद्गल किसी ही भाव को लिए चतुर्थ परिवर्तन के अनंतर समय विषय ग्रहण हुई, यानी वहाँ एक समय में आठों ही कर्म संबंधी परमाणु ग्रहण किए, जिसको हम कर्म का समय प्रबद्ध कहते हैं। जो परमाणु थे और उनके जो भाव, भाव यानी स्पर्श रस गंध वर्ण सारे ही भाव लेना, अकेले उसके अन्य भाव नहीं लेना, उसके खाली अभी उसका फलदान इतना ही नहीं लेना, उस उद्गल परमाणु के जो जो भाव है स्पर्श रस गंधादि, तो यहू सॉरी फिर पढ़ती हूँ। पीछे पहले समय जैसे पुद्गल ग्रह थे तेई पुद्गल, वे ही पुद्गल को महत्व है, वैसे ही पुद्गल नहीं कहा, वैसे पुद्गल और वे ही पुद्गल में फर्क है ना। हम अन्य परमाणु ग्रहण करेंगे और है वैसे के वैसे, उसके स्पर्श रस गंध वो नहीं चलेगा, तो वे ही पुद्गल किसी ही भाव को लिए, पुद्गल भी वही चाहिए, उनके भाव भाव यानी उनकी पर्याय भी वही चाहिए। चतुर्थ परिवर्तन के अनंतर समय विषय यानी चौथी लाइन के अंत कॉलम के बाद वाला जो समय है, उस समय जो ग्रहण करेंगे तो यहू सर्व मिला हुआ संपूर्ण कर्म परिवर्तन जानना, यानी एक परिवर्तन में वो चार परिवर्तन हमने देखे, वैसा होने के बाद अनंतर समय में ये एक कर्म परिवर्तन पूरा हुआ। इस द्रव्य परिवर्तन को पुद्गल परिवर्तन भी कहिए है, तो नौ कर्म पुद्गल परिवर्तन का और कर्म पुद्गल परिवर्तन का काल समान है। आप कर्म में गिनो या नौ कर्म में गिनो, उनका काल एक ही है। जब पुद्गल परिवर्तन कहते हैं तो उसका काल एक ही है। बहुरी यहाँ इतना जानना, पूर्वे जो क्रम कहा तहा जैसे पहले अनंत बार अगृहित का ग्रहण किया, तहा बीची बीची में गृहित ग्रहण व मिश्र ग्रहण भी हुई, तो अनुक्रम विषय तो पहली बार और दूसरी बार आदि जो अगृहित ग्रहण हुई तो ही गिनने में आवे है। और काल परिमाण विषय गृहित मिश्र ग्रहण का समय सहित सर्व ग्रहण गिनने में आवे है, यानी वहां तो हम ऐसे गिनेंगे ना, अगृहित ग्रहण किया फिर बीच में इतना गया फिर दूसरी बार अगृहित गया फिर तीसरी बार, वहां तो वो तो गृहित 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 या अगृहित 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 लेते हैं, परंतु बीच में जो समय गए वो तो हम काउंट कर नहीं समझा। एक बार अगृहित ग्रहण किया, दूसरी बार अगृहित ग्रहण किया, तीसरी बार अगृहित ग्रहण किया, उसके बीच में जो जो समय जाएगा वो सारा ही ग्रहण करना है, उसके बीच में अन्य कुछ करेगा तो वो नहीं काउंट करना, परंतु टाइम काउंट करना। सीक्वेंस ये चाहिए जो हमने यहाँ बताया, इसी सीक्वेंस से जब जब वो 001 00+ कहा है तो अगृहित 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 ऐसा हम अनंत बार निरंतर उसको गिनेंगे, परंतु काल जितना लगेगा उतना गिनेंगे उसके लिए, क्योंकि हमारा टाइम तो चल रहा है, हमने वॉच ऑन किया है, तो काल गिनना और सीक्वेंस वो चाहिए। क्या कहते देखो फिर यहाँ इतना जानना से पड़ती हूँ, पूर्वे जो क्रम कहा तहा जैसे पहले अनंत बार अगृहित का ग्रहण किया, तहा बीची बीच में गृहित ग्रहण व मिश्र ग्रहण भी हुई, 00+ लिखा है ना, अभी तो हमने बहुत स्थूल रूप से समझाया था, क्या कहा था, 00+ अगृहित फिर अगृहित फिर अगृहित फिर अगृहित और बाद में एक बार मिश्र, परंतु ये लगातार अगृहित नहीं हो, बीच में मिश्र भी हो गए, वो मिश्र नहीं ग्रहण करना, कौन सा मिश्र ग्रहण करेंगे, अनंत बार अगृहित होने के बाद वाला मिश्र ग्रहण करेंगे, उसको हम कहेंगे पहला मिश्र, फिर बीच में लगातार अनंत बार अगृहित हो गए तब दूसरा मिश्र कहेंगे, बीच बीच में जो मिश्र आएंगे उसको नहीं गिनेंगे परंतु काल को गिनेंगे, क्योंकि अगृहित में बीच में मिश्र आ सकता है, परंतु समझो 100 अगृहित के बाद एक मिश्र आएगा तो उस मिश्र को नहीं ग्रहण करेगा, अनंत बार अगृहित के बाद वाला मिश्र आएगा उसको ग्रहण करेंगे, तो उसको पहला मिश्र ग्रहण करेंगे, बीच वाले मिश्र को मिश्र नहीं कहेंगे परंतु काल तो काउंट करेंगे, काल काउंट करना, पर बीज वाले वो अन्य अन्य कोई हो गए वो नहीं काउंट करना, लगातार जो अग्रहित वाले हो गए उसी को काउंट करना। यानी समझो अग्रहित के बाद 4 साल के बाद दूसरा अग्रहित होगा तो ये दूसरा अग्रहित है हमारा, फिर ऐसे तीसरा अग्रहित, ऐसे चौथा अग्रहित, ऐसे समझो अग्रहित को हम अनंत बार करेंगे तब जाके जो पहला मिश्र आएगा उसको हम मिश्र गिनेंगे। बीच वालों को मिश्र भी नहीं गिनेंगे परंतु काल को गिनेंगे। यानी काल तो लेना परंतु सीक्वेंस इसी ऑर्डर में ही ग्रहण करना। हाँ कुछ भी आ सकता है बीच में परंतु उसको काउंट नहीं करना है, जिस ऑर्डर में टेबल दिया है उसी ऑर्डर में उसको लेना। बीच में जो ऐसा टाइम पड़ेगा ना, नहीं तो क्या, क्योंकि वो कैसे भी परमाणु ग्रहण करता तो बीच वाले वो उसको नहीं काउंट कर। ये तो इसकी क्योंकि ये ख्याल में नहीं होता, नहीं ऐसा ही कैसे ग्रहण कर सकता है, इसी ऑर्डर से कैसे ग्रहण करेगा, इसी ऑर्डर से ग्रहण करता ही नहीं, परंतु काउंट करते समय इसी ऑर्डर से काउंट करना है, तो इसलिए उसका टाइम तो और बढ़ जाता है। देखो पूर्वे जो क्रम कहा कहा, जैसे पहले अनंत बार अग्रहित का ग्रहण कहा, देखो है ना, पहले 00+ लिखा था तो अनंत बार अग्रहित का कहा था, कहा बीची बीच में गृहित ग्रहण व मिश्र ग्रहण भी हो ही, तो वहां तो कुछ लिखा ही नहीं, 00+00+ लिखा, परंतु बीच में जो मिश्र और गृहित वाले हो गए उसको काउंट नहीं करना, काल को काउंट करना। तो बीची बीची गृहित और गृहित ग्रहण व मिश्र ग्रहण भी हुई तो अनुक्रम विषय तो पहली बार और दूसरी बार आदि जो अग्रहित ग्रहण हुई तो ही गिनने में आवे है। यानी पहला हमने जो काउंट शुरू किया अग्रहित अग्रहित 10 बार हुआ, एक बार गृहित आया तो उस गृहित को लेना ही नहीं है, जितने अग्रहित लेंगे उसी को काउंट करना, वो जब अनंत हो गए तब जाके जो पहली बार मिश्र होगा उसको पहला मिश्र कहेंगे। समझ रहे हैं ना, बीच वाले जो गृहित अग्रहित गृहित जो हो गए मिश्र होंगे उसको नहीं काउंट करना, अनंत के बाद वाला मिश्र उसको काउंट करना, फिर अनंत बार अग्रहित होगा फिर मिश्र होगा फिर उसको काउंट करना। और काल परिमाण विषय गृहित मिश्र ग्रहण का समय सहित सर्वकाल गिनने में आवे, काल में तो सारा का सारा काल लेना, जिनी समय नहीं विषय समय हुआ है। ये पूरा कर देती क्योंकि ये परिवर्तन हो जाएगा नहीं इसमें, जिनी समय नहीं विषय गृहित का ग्रहण है ते समय गृहित ग्रहण के काल विषय गिनने में आवे है, जिनी समय नहीं विषय मिश्र का ग्रहण हो है ते समय मिश्र ग्रहण के काल विषय गिनने में आवे है। यानी हम पहले बताए थे ना गृहित ग्रहण काल कौन सा, जिस समय में गृहित का ग्रहण है वो गृहित ग्रहण काल, जब जब मिश्र ग्रहण का काल है तब तब मिश्र ग्रहण काल, जिन समय नहीं विषय अग्रहित ग्रहण हो है ते समय अग्रहित ग्रहण काल विषय गिनने में आवे है, तो यहू उदाहरण क्या है ऐसे ही सर्वत्र जानना। क्रम विषय तो ये ना वो काल गिनने में तो सबको हम कहेंगे, परंतु जब क्रम की बात आती है तो जैसा अनुक्रम कहा होई तैसे होई तब ही गिनने में आवे है। पहले 00+ कहा तो वो प्लस एक बार कब गिनेंगे, जब अनंत बार 00 हो गए तब, अनंत बार अग्रहित हो गए तब उसको पहला मिश्र कहेंगे। बीच में मिश्र आए या गृहित आए उसको हम गिनेंगे नहीं, काल को गिनेंगे, उसी सीक्वेंस से जो जो हो गए उसी को हम काउंट करें। और किस अनुक्रम के बीच ही कोई अन्य रूप प्रवर्तय तो अनुक्रम विषय गिनने में नहीं, और जिनी समय विषय अन्य रूप भी प्रवर्तय तिनी समय रूप जो काल तो परिवर्तन का काल विषय गिनने में आवे ही है। समझ गए ना, बीच में सीक्वेंस छोड़कर जो अन्य का ग्रहण होता है वो ग्रहण को तो नहीं लेना परंतु उसके काल को गिनना। यानी काल तो आगे बढ़ रहा है परंतु ऐसे अनंत बार अग्रहित होने के लिए कितना टाइम चाहे, बीच बीच में जो मिश्र हो गृहित हो उसका नहीं काउंट करना, अकेले इसी सीक्वेंस से इसी अनुक्रम से जो जो आएगा उसी को हम ध्यान में लेंगे, तब जाके वो एक बार ऐसा हुआ फिर 2 बार हुआ फिर अनंत बार हुआ ऐसा। बीच में तो कैसे भी हो सकते है, वही परमाणु भी ग्रहण कर सकता है अन्य भी ग्रहण कर सकता है, उसको नहीं काउंट कर। इस तरह से इसमें से तो हो गया कलम संदृष्ट अधिकार में इसको पढ़कर फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा परिवर्तन चालू करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नवो सदा देतो।